सातवां स्कंद अध्याय संख्या 2। अध्याय का नाम है असुराज हिरण्यकश्यपु। श्लोक संख्या 28 से 31। श्लोक संख्या 28 29 श्लोक संख्या 28 का कोई तात्पर्य नहीं है, 29 30 31 का इकट्ठा तात्पर्य है। बोर्ड पर श्लोक संख्या 31 लिखिए तो इसको दोहराएंगे। उषी नरेन्द्रम विधिना तथा कृतम् पतिं महिष्या प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेतु करेरुरोधशम् घनन्तयो मोहस्तत्पदयो रूपापतन। उषी नरेन्द्रम विधिना तथा कृतम् पतिं महिष्या प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेति करेरुरोमृशम् घनन्तयो मोस्तत्पदयो रूपापतम्। उषी नरेन्द्रम विधिना तथा कृतम् पतिं महिष्या प्रसमीक्ष्य दुःखिता हतास्मनाथेति करेरुरोभृशम् अनन्तयो मोस्तत्पदयो रूपापतम्। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। उषीनिन्दरम उषीनर राज्य के स्वामी को विधिना विधाता से तथा इस तरह कृतम इस दिशा को प्राप्त पतिम पति को महिष्या रानिया प्रसमीक्ष्य देख कर दुखिता अत्यंत दुखी हता मारी गई स्म निश्चय ही नाथ हे स्वामी इति इस प्रकार करई हाथों से उरह वक्षस्थल ऋषम निरंतर धनंत्या पीटती हुई मुहु बारंबार तत्पदयो राजा के चरणों पर उपापतन गिर पड़ी। अनुवाद एवं तात्पर्य अनुवाद तीन श्लोकों का इकट्ठा है। वध किया हुआ राजा युद्ध स्थल में लेटा था, उसका सुनहला रत्न जटित कवच छिन्न भिन्न हो गया था, उसके आभूषण तथा वस्त्र अपने अपने स्थान से विलग हो चुके थे, उसके बाल बिखर गए थे और उसकी आँखें कांतिहीन हो चुकी थीं, उसका सारा शरीर रक्त से सना था और उसका हृदय शत्रु के बाणों से विंधा था। उसने मरते समय अपना शौर्य दिखाना चाहा, अतएव उसके होठ दांतों से भींच गए थे और दांत अपनी स्थिति में थे। उसका कमल सदृश सुंदर मुख अब काला पड़ गया था और युद्ध भूमि की धूल से ढका था। तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसके हाथ कट कर टूट चुके थे। जब उषीनर राजा की रानियों ने इस स्थिति में अपने पति को पड़ा देखा तो वह रोने लगी, ये नाथ तुम्हारे मारे जाने से हम भी मारी जा चुकी हैं। इन शब्दों को टेर टेर कर वे अपनी छाती पीट पीट कर मृत राजा के चरणों पर गिर पड़े। तात्पर्य, जैसा कि कहा गया है रवसा दिष्टद छदम। युद्ध के समय राजा क्रुद्ध था, उसने अपना पराक्रम दिखाने के लिए अपने होठ काटे तो भी वह विधिवश विधिना मारा गया। इससे सिद्ध होता है कि हम उच्चतर शक्तियों द्वारा नियंत्रित हैं। हमारी निजी शक्ति या प्रयास सदैव श्रेष्ठ नहीं रह पाते, हमें परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति स्वीकार करनी चाहिए। इससे पहले श्लोक संख्या 28 का अनुवाद। उशीना नामक राज्य में सुयज्ञ नाम का विख्यात राजा था। जब यह राजा युद्ध में शत्रुओं द्वारा मार डाला गया तो उसके संबंधी मृत शरीर को घेर कर बैठ गए और अपने मित्र की मृत्यु पर शोक प्रकट करने लगे। हरे कृष्णा, आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस भागवत कक्षा में। तो हिरण्यकश्यप के भाई का वध हो गया है, हिरण्याक्ष का, और हिरण्यकश्यप अपने भाई की पत्नी, अपनी माँ और भाई के बच्चों को सांत्वना दे रहे हैं। तो सांत्वना देने के लिए पहले उन्होंने आत्मतत्व, आत्मा का ज्ञान दिया। फिर उनको लगा होगा कि ये जो स्त्रियाँ हैं इतनी गहरी बातें नहीं समझ पाएंगी, तो कुछ कथा सुनाते हैं। तो उन्होंने पुराणों से कथा ली और पुराणों से कथा शुरू करते हुए बोला कि उशीनर नामक राज्य में एक सुयज्ञ नाम का विख्यात राजा था, और जब यह राजा युद्ध करने गया अपने शत्रुओं द्वारा मारा गया और उसके संबंधी उसके मित्र शरीर पर लेट गए और उसके शोक करने लगे। तो इस श्लोक में बताया कि कैसे शोक कर रहे हैं, इसमें खाली एक श्लोक लिखा है। और उस राजा की क्या स्थिति थी जब राजा का मृत शरीर उनकी पत्नियों के सामने आया, तो उसका जो सुनहला रत्न कवच था छिन्न भिन्न हो गया था, उसके आभूषण और वस्त्र अपने अपने स्थान से बिलग हो गए थे, उसके बाल बिखर गए थे, आंखें कांतिहीन हो गई थी, सारा शरीर रक्त से सना हुआ था, उसका हृदय शत्रु के बाणों से बिंधा था, और मरते समय उसने अपना शोर दिखाना चाहा, शौर्य, गुस्सा, अपना वीरता दिखानी चाहिए। तो क्या था, उसके दांत से वो होठों को पीस रहा था और इसी हालत में उसकी मृत्यु हो गई। और वही चेहरा सामने था और कमल जैसा चेहरा, बिल्कुल प्राण निकलने के बाद काला पड़ गया था, धूल से लिपटा हुआ, और दांत वैसे के वैसे ही थे, अपने स्थान पर थे, और तलवार तथा अन्य हथियारों से युक्त उसके हाथ कटकर टूट चुके थे। जब उशीनर राजा के स्थिति को उसकी पत्नियों ने देखा तो वो जोर जोर से रोने लगे और बोले, हे नाथ, तुम्हारे मारे जाने से हम भी मर चुके हैं। और बार बार अपनी छाती को वो पीटने लगे और जोर जोर से विलाप करने लगे। तो इस ढंग से हिरण्यकश्यप बता रहे हैं कि सुयज्ञ नाम का राजा जो कि उशीनर क्षेत्र का था, उसकी मृत्यु जब हुई तो उसकी राइयाँ कैसे विलाप कर रही थी। तो हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि राजा मरने से पहले अपना शौर्य दिखाना चाहता था लेकिन दिखा नहीं पाया। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि इससे सिद्ध होता है कि हमसे भी ऊपर कुछ शक्तियाँ हैं, यानी कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम चाहें वो हो जाए। क्या अनुभव है आप लोगों का, कितनी बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं वो हो जाता है? कितनी बार होता है? ऐसा अक्सर होता है, कभी कभी होता है, कभी कभी होता है, और कई बार कभी नहीं होता। तो जो हम चाहते हैं वो होता नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर सब कुछ हमारे प्रयासों पर ही निर्भर करता है तो जो हम चाहते हैं हमें मिल जाना चाहिए। हमारे हर एक कार्य के पीछे उद्देश्य होता है हम सुखी हो जाएं और हमारा दुख कम हो जाए, लेकिन परिणाम हमेशा उल्टा होता है। इसका मतलब हमारे से ऊपर भी कुछ अथॉरिटीज हैं, जो शक्तियां हैं, जो निर्धारित करते हैं इस कर्म का क्या फल होगा। हमारी इच्छा या हमारे प्रयास से उस कर्म का फल निर्धारित नहीं होता। हम जितनी मर्जी प्रबल इच्छा क्यों ना रख लें, जितना ज़्यादा कड़ा प्रयास क्यों ना कर लें, उससे हम फल प्राप्त नहीं कर सकते, फल को निर्धारित नहीं कर सकते, फल कोई और निर्धारित करता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे से ऊपर कुछ शक्तियां हैं, बट पागलपन की बात यह है कि बद्ध जीव इतना बुद्धू है कि वो समझ नहीं पाता। वो समझता है कि मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूं और मैं जैसा चाहा मुझे वैसा क्यों नहीं मिल रहा, और वो संघर्ष करता है और संघर्ष करता है। अगर हम केवल इतना जान जाएं कि हमारे ऊपर कुछ शक्तियां हैं और मुझे उन शक्तियों पर निर्भर रहना है, उनकी कृपा पर निर्भर हूं, जीवन सरल हो जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, हम परमेश्वर द्वारा प्रदत्त स्थिति स्वीकार कर लेंगे। जो परिस्थितियां मुझे प्राप्त हुई हैं उसको मैं स्वीकार कर लूंगा और शांत रहूंगा, सरल जीवन रहूंगा। लेकिन अभी हम जो परिस्थितियां हमें प्राप्त हुई हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, हम चाहते हैं हम इसको बदलें, है ना। और अक्सर लोग बोलते भी हैं आई एम ए सेल्फ मेड मैन, ये परिस्थितियाँ मैंने खुद बनाई है ना। कई बोलते हैं कि हम जब पाकिस्तान से आए थे 3 कपड़ों में आए थे और आज देखो पूरा वार्डरोब भरा पड़ा है। पाकिस्तान से आए थे एक चाय की दुकान से शुरू किया था और आज देखो कितने 5-star होटल्स की चेन है मेरे पास, है ना। किसने किया? मैंने किया। और किसने किया? मेहनत किसने की? मैंने की, परिणाम मुझे मिला। तो अक्सर ये गलतफहमी हमें रहती है और हर कोई वैसा ही बनना चाहता है सफल व्यक्ति, लेकिन जानना पड़ेगा कि हमसे ऊपर भी उच्चतर शक्तियां हैं। तो ये जो राजा सुयज्ञ थे, राजा सुयज्ञ जब युद्ध करने गए तो शत्रु ने इन पर आक्रमण किया। जब शत्रु ने इन पर आक्रमण किया तो उनको क्रोध आया और क्रोध से उन्होंने बोला दिखाता हूं मैं तुम्हें कौन हूं। हा? वैसे ही व्यक्ति झूठे अहंकार के कारण अपने आप को समझते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं। भगवदगीता में क्या कहा? प्रकृति के माणा नहीं गुणे सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यते। ये झूठे अहंकार के कारण हम सोचते हैं हम करता हैं। झूठा अहंकार का क्या अर्थ है? हम सब जीवात्मा हैं, भगवान के अंश हैं। इसका मतलब हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व है यानी अहंकार। अहंकार कोई गलत शब्द नहीं है, ये वास्तविक अहंकार अस्तित्व को दर्शाता है। किसी का अस्तित्व है, मैं हूं, ये अहंकार है मैं। तो अहंकार आत्मा भगवान का दास है, भगवान का अंश है, लेकिन ये जो अंश है भगवान का ये प्रकृति के रूप में है, भोक्ता के रूप में नहीं है। भगवान गीता में कहते हैं ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। जीवात्मा भगवान का अंश है प्रकृति के रूप में, भोक्ता के रूप में नहीं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि भगवान की 16,108 रानियां थी, मैं उनका अंश हूं तो मेरी भी कम से कम एक रानी होनी चाहिए, है ना। हमारे पास एक, हम किसी के भी कोई व्यक्ति प्रकृति कभी किसी का पति नहीं बन सकता। प्रकृति हमेशा आश्रित रहते हैं, वो तो इस भौतिक जगत में इस कुछ सिस्टम को चलाने के लिए एक संगठन किया गया, तो गृहस्थ आश्रम बनाया गया, किसी जीवात्मा को पुरुष देह, किसी जीवात्मा को स्त्री का देह मिला, लेकिन वास्तव में हम सभी प्रकृति हैं। और जब प्रकृति पुरुष बनना चाहता है तो उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। जब प्रकृति अपने आप को पुरुष मानता है वो मिथ्या अहंकार है। पुरुष का अर्थ है कर्ता और भोक्ता, कि मैं डूअर हूं, मैं इंजॉयर हूं, मैं करता हूं। और अगर मैंने किया तो भोक्ता कौन होना चाहिए? मैं होना चाहिए, कि काम मैंने किया। ये कहां का ये वो है न्याय है कि काम कोई करे उसका फल कोई और भोगे? तो न्याय है ही नहीं। जब कर्ता मैं हूं तो फल का जो भोक्ता भी मैं ही होना चाहिए, और कौन होगा? मेहनत मैंने की है तो फल मैं भोगूंगा, न्याय भी यही है। तो मैं पुरुष हूं, मैंने काम किया, भोक्ता मैं हूं, लेकिन वास्तव में मैं पुरुष नहीं हूं, मैं प्रकृति हूं। और जब प्रकृति अपने आप को पुरुष मानना शुरू करता है उसको मिथ्या अहंकार कहते हैं। और जीव तटस्था प्रकृति है। तटस्था प्रकृति के पास ये विकल्प है कि वो भगवान की सेवा करे या भगवान की सेवा से विमुख हो जाए। तो जब ये जीव निर्णय लेता है कि मुझे भगवान की सेवा नहीं करनी, उसको भोग करना है, तो भोग करने के लिए प्रकृति उसको झूठा अहंकार देती है। प्रकृति उसका आलिंगन कर लेती है, आजा बेटे राजा। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया करे, झपटी आता है, एकदम झपट आ जाएगा, ठक से झपट लेती है। लो झूठा अहंकार, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, तुम पुरुष हो, तुम भोगता हो। फिर मैं लगता है सारा का सारा जगत मेरे भोग के लिए है। इसलिए एक छोटी चींटी से लेकर ब्रह्मा जी प्रभुपाद कहते हैं सब अपने आप को भोगता समझते हैं। एक घास का तिनका भी अपने आप को भोगता समझता है ना। हम बोलते हैं त्रिणादेवी सुनिश्चिन, लेकिन जो घास का तिनका है वो भी अपने आप को इंजॉयर समझता है, डूअर एंड इंजॉयर, कर्ता और भोक्ता। तो ये हमारे पहले से एक पागलपन है कि हम हैं प्रकृति और अपने आप को पुरुष समझ रहे हैं। एक पागलपन और बढ़ जाता है जब हमारे इस अहंकार को ठेस पहुंचाता है, जब मेरे इस भोगने की प्रवृत्ति में कोई हस्तक्षेप करता है तो मुझे क्रोध आ जाता है। और जब क्रोध आता है तो उस पागलपन में मैं कुछ चिल्लाता हूं, कुछ बड़बड़ाता हूं, है ना। होता है किसी के साथ अक्सर देखेंगे जब किसी को क्रोध आता है तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है ना। बायोलॉजी बताती है कि मेडिकल साइंस, एड्रेनल फ्लो होता है उसके अंदर, है ना, शक्ति आ जाती है ज़्यादा। और कहीं भी शक्ति आ सकती है, हाथों में इतनी शक्ति आती है मारता है जोर से, है ना, पैर से किक करता है, उठा के कहीं भी कुछ कर सकता है ना, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। शक्ति भी आती है और कुछ चिल्लाता भी है, बोलता भी है जोर से, एंग्री यंग मैन की तरह, खूब डायलॉग बोलता है। और फिर उसका अंदर का सारा जो अहंकार है निकल के आता है, जानते नहीं मैं कौन हूं, दिखा दूंगा तेरे को, खत्म कर दूंगा, है ना। उससे साफ साफ दिखाता है कि मैं भगवान हूं, सर्वशक्तिशाली हूं, सबको खत्म कर दूंगा। आज सामने यह मां का दूध पिया था, सबको खत्म कर दूंगा। जैसे सब कुछ उसके हाथ में है, हाथ में छोटा सा चाकू होगा बस, हो सकता है वो भी ना हो, लेकिन जैसे उसके सब कुछ उसके हाथ में, वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, किसी को भी खत्म कर सकता है, वो प्रलय ला सकता है, इतना क्रोध है ना। तो उस समय वो बड़बड़ाता है और उसका पागलपन एकदम सर्वोत्तम होता है। वो सोचते हैं मैं सर्वशक्तिशाली हूं, यानी कि मैं भगवान हूं। और जब भगवान देखते हैं, अच्छा पहले तो पागल था, पागल पागल हो गया और पागल हो गया और बड़बड़ा रहा है, अच्छा तो सब कुछ कर लेगा। देखता हूं भगवान किसी भी जीव के अंदर, चाहे वो असुर प्रकृति का हो या असुर प्रकृति का हो, अहंकार नहीं देख सकते। बोले अच्छा ठीक है, अब देखता हूं, कर ले जो कर सकता है, है ना, मैं खत्म कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। देखो जो हम आप देखेंगे क्रोध वश अहंकार वश ऐसे बोलते हैं, भगवान उसका हमेशा विपरीत कराते हैं, आप देख लीजिए। और शास्त्रों में से भी कई उदाहरण है। इंद्र को क्रोध आया, समर्थक पागल लेकर प्रलय कर दूंगा, भगवान कहते ठीक है जितने समर्थक पागल ला सकते हैं ले आओ, मैं देखता हूं कैसे तुम प्रलय लाते। ब्रह्मा जी के अंदर अहंकार आया, देखते हैं भगवान क्या, चेक करो, करो चेक, दिखाता हूं तुम। हिरण्यकश्यप के अंदर अहंकार आया, भगवान ने देखो। उसी ढंग से राजा ओशिंदर के अंदर भी हो सकता है अहंकार आया हो, जानते नहीं कौन हो, मेरे को मार रहे हो, अभी दिखाता हूं, गुस्सा करके दांत पीसती है ऐसे, वहीं पे मर गया एकदम। और उसकी देखो, हमारे अगर हम कोई गुस्से में हो, हमारी कोई फोटो खींचे कट से और वीडियो क्लिप दिखाए, हमारे लिए बहुत एम्बेरेसिंग होगा, है ना। क्या शक्ल थी और क्या डायलॉग बोल रहे थे, है ना। वैसे तो मैं चुप रहता हूँ, कुछ बोलता नहीं, गुस्सा आ गया मैंने सब कुछ बोल दिया। मैं बहुत हम्बल व्यक्ति हूँ, मैं तो दास हूँ, लेकिन जब मेरे बार बार कोई जख्मों में मारेगा तो फिर दिखा दूंगा मैं कौन हूँ अपना पूरा पागलपन। श्री श्री राधा राधिका रमन जी की, श्री श्री कृष्ण जगन्नाथ। तो भगवान कहते हैं अच्छा अहंकार वश ये कह रहा है, ये बात मैं कभी सत्य नहीं होने दूंगा, भगवान सत्य संकल्प है, हम लोग नहीं है। अहंकार वश कह रहे हैं गुस्से में, भगवान तुरंत देखते अब बता करके दिखा तुम कैसे करेंगे। वास्तव में भगवान ने पूरी भौतिक जगत की रचना ही ऐसे की है कि कदम कदम पर हमें खतरा है, पदम पदम यत विपदम, ताकि पदम पदम पे कदम कदम पे हम जो प्लान करते हैं वो फेल होता जाता है। बार बार पे हम ये रियलाइज करने के लिए कि तुमसे ऊपर भी कोई है, तुम्हारे प्रत्येक क्रिया के पीछे कोई व्यक्ति है जो कि सैंक्शन करता है, जो अनुमति देता है, आपकी इच्छा से और प्रयास से कार्य नहीं हो रहे हैं। तभी तब देखिए पदम पदम जब विपदम, इतनी बाधाएं हमें आती है और हम संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन हम मान जाएं कि हाँ कुछ अथॉरिटीज हैं, उनको हम सरेंडर करें तो सारा कार्य सरल हो जाएगा। और कलयुग की यह विशेषता है कि हम किसी भी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, किसी भी अथॉरिटी को। और देखते हैं कि इसी अहंकार के कारण हम देखते हैं आजकल घरों में कितने झगड़े हो रहे हैं। और इस कलयुग में जो शिक्षा प्रणाली है, जो रहन सहन का तरीका है, वो सब उससे क्या होता है कि हर किसी के अंदर भोक्ता भाव बढ़ता जा रहा है, इंजॉइंग स्पिरिट, जो मिथ्या अहंकार कारण है कि इंजॉइंग स्पिरिट बढ़ रही है। तो चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थी में स्त्री और पुरुष दोनों हैं, अब दोनों के अंदर एक कर्ता मैं, भोक्ता मैं भोगूंगा, बोले मैं भोगूंगी, तो क्लैश होगा ही होगा। इसलिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं बन सकता। किसी भी आप रिलेशनशिप में देखेंगे जहां ये कंट्रोलिंग, जहां अहंकार के कारण हम नियंत्रण करना चाहते हैं, हम भोक्त करना चाहते हैं, हम सारी वस्तुएं खुद निर्धारित करना चाहते हैं, तो कभी भी संबंध नहीं स्थापित हो सकता। तो भगवान ने देखा कि उशिनर का राजा इस तरह से व्यवहार कर रहा है, तो तुरंत उनके शत्रु ने उनका वध कर दिया। अहंकार वश हमारी जो योग्यताएं हैं वो अयोग्यताएं बन जाती हैं, हमें अपनी योग्यताओं पर बहुत अहंकार होता है। और अच्छे अच्छे भक्तों में ये समस्या आ जाती है, अच्छे अच्छे भक्तों में, क्योंकि भक्ति करते करते, सेवा करते करते हम अपने कुछ कौशल का उपयोग करते हैं, कुछ हमें तथाकथित सफलता मिलती है, तो हमें अहंकार आ जाता है कि ये सब मैं करता हूँ, मेरे कारण है, और हम भगवान की कृपा को भूल जाते हैं। और भगवान समय समय फिर हमें ये याद दिलाते हैं, जैसे कि कृष्ण पुस्तक में हम पढ़ते हैं दशम स्कंद में, कि जब द्वारका में एक ब्राह्मण था जिसका जैसे पुत्र का जन्म होता था, पुत्र माँ के घर से बाहर निकलते ही गायब हो जाता था, थोड़ी देर रोता था फिर गायब हो जाता था। जब ऐसा हुआ तो आजकल कोई पुत्र का जन्म हो, बच्चा पैदा हो और पैदा होते ही मर जाए, कोई खास बड़ी बात नहीं है, पूर्व काल में ऐसा होना, पिता के होते हुए पुत्र की मृत्यु, बहुत बड़े जिसे कहते हैं दुर्घटना है, और इसका जिम्मेवारी किसको माना जाता था? राजा को। और आजकल ऐसा होने लगे तो मनमोहन सिंह का बुरा हाल हो जाएगा, सब लोग उनके धरना दे दे लेंगे, क्या हो क्या रहा है। तो वो राजा के पास चला गया, उग्रसेन के पास, और बोले कैसा राजा है तुम तो शत बुद्धि वाले हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं है, तुम ब्राह्मणों से द्वेष करते हो, लालची हो, कोई चरित्र नहीं है, तुम राजा होने लायक नहीं हो, क्षत्र बंधु हो, गालियां पे गालियां। और उसका पूरा कोई उसको रोक नहीं सका गालियां देने से, क्यों? राजा के होते हुए उसका शिशु जो माँ के घर से बाहर निकलते गायब हो गया, और राजा कुछ नहीं कर पाया, कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया। तो ब्राह्मण ने खूब गालियां दी, बेचारा उग्रसेन चुपचाप बैठे रहे, कुछ नहीं कर सके। दूसरा पुत्र हुआ, तीसरा पुत्र हुआ, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, जब नवा पुत्र हुआ तब भी ऐसा हो गया, फिर वो गाली देने आया, वो नियम से गाली देने जरूर आता था। तो जब वो गाली देने आया तो उस समय अर्जुन वहां पे थे कृष्ण के साथ, तो अर्जुन को बड़ा अजीब सा लगा, ये क्या चक्कर है, राजा को ऐसे गाली दे रहे हैं, क्यों भाई? उसने बोला, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्या तुम्हें लगता नहीं कोई भी ऐसा क्षत्रिय है जो तुम्हारी रक्षा कर सके? ऐसा अगर कोई क्षत्रिय आपकी रक्षा नहीं कर सकता, ये सब ड्रामा चल रहा है, क्यों ऐसा कह रहे हो, आपको लगता है कोई क्षत्रिय रक्षा कर पाएगा? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोले आप क्या रक्षा करोगे? संकर्षण रक्षा नहीं कर सके, कृष्ण रक्षा नहीं कर सके, प्रद्युम्न रक्षा नहीं कर सके, अनिरुद्ध रक्षा नहीं कर सके, आप क्या रक्षा करोगे? तो अर्जुन ने कृष्ण की तरफ देखा, बोले मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं संकर्षण नहीं हूँ, मैं प्रद्युम्न नहीं हूँ, मैं अनिरुद्ध नहीं हूँ, मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन, मेरे पास गांडीव है, मैंने स्वयं शिव को संतुष्ट किया है, हम जब शिकार पे निकले थे शिव जी को मैंने संतुष्ट किया, और स्वयं शिव ने मुझे पशुपात अस्त्र दिया है, मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है कोई क्षत्रिय ब्राह्मण की रक्षा न कर सके? और मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुम्हारे मैं पुत्र की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे, अच्छा करो, ठीक है ना। अर्जुन का अहंकार देखो, कृष्ण को ही सुना रहा है, कृष्ण के सामने कृष्ण को ही सुना रहा है, मैं कृष्ण नहीं हूं, ना ही मैं संकर्षण, मैं अर्जुन हूं। ठीक है, समय आया और अर्जुन भाग के गए, उसमें गर्भागृह के बाहर खड़े हो गए, धनाधन चारों तरफ तीर फेंक दिए उन्होंने, है ना। और अब देखिए वो अब प्रार्थना करने लगे, और अब प्रार्थना उन्होंने भगवान कृष्ण से नहीं की, शिव जी की शरण ले ले। बोले कृष्ण तो कुछ कर ही नहीं पाए इस केस में, तो मैं अब शिव जी की शरण ले लेता हूँ। देखियो अहंकार वक्ष व्यक्ति की बुद्धि कैसे हर ली जाती है। उसने अब शिव जी की शरण ली, और शिव जी से फिर पशुपात जो तीर था उसका पूरा उपयोग किया, और सारे मंत्रों का उच्चारण करके तैनात हो गए, अब मैं देखता हूँ कैसे कुछ गड़बड़ होती है। पुत्र बाहर आया, थोड़ी देर रोया, गायब। अर्जुन परेशान, देखा ऊपर नीचे सब। तब तक क्या किया था भगवान ने, जो अर्जुन ने सारे पशुपात अस्त्र लगाए थे और जो मंत्र बोलते, भगवान ने सब के सब हार लिए। शिव ने दिया था ना पशुपात अस्त्र, शिव जी को ये शक्ति किसने दी? मैंने दी, लो हार लेता हूँ। ये हम भूल जाते हैं, एक अथॉरिटी याद है, उससे ऊपर वाली अथॉरिटी याद नहीं है, है ना। लो हार लिया, भगवान ने अल्टीमेट अथॉरिटी, भगवान ने पशुपात अस्त्र हार लिया, अर्जुन बिल्कुल इनएफेक्टिव हो गया, और अर्जुन घबरा गया। लेकिन फिर भी अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी, बोले अभी भी बहुत हिम्मत है। अर्जुन को भगवान ने योगिक शक्तियां दी थी, उस योगिक शक्तियों का उपयोग करके अर्जुन यमराज के लोक में गया, कुछ नहीं मिले वहां पे, इंद्र के लोक में गए, वायु के, वरुण के, निवृत्ति के, चंद्र के, और फिर रसातल, तलातल, ब्रह्मा जी के लोक तक चला गया, जहां बड़े बड़े योगी भी नहीं जा सकते थे, सब जगह घूम के आ गया अर्जुन, वो पुत्र नहीं मिला। अब अर्जुन के पास और कोई रास्ता नहीं था, वो बेचारा अग्नि में प्रवेश करने लगा। फिर भगवान आ रहे, कहाँ जा रहे, चलो मैं तुम्हारी हमेशा ही रक्षा करता आया हूँ, फिर से रक्षा करो। फिर भगवान उसको ले गए, और फिर महाविष्णु के पास वो पुत्र मिला। तो हम देखते हैं अहंकार वश व्यक्ति कितना मूर्ख बन जाता है। और जिस भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की हमेशा रक्षा करता है वो उसको भी भूल जाता है, और उनका विश्वास डगमगा जाता है, और वो शिव जी पे विश्वास करने लग गया। जो अहंकार वास्तव में जो मिथ्या अहंकार है उसका हम अर्थ लेंगे भोगने की प्रवृत्ति। तो हम देखते हैं जब हम भक्ति में प्रारंभ अवस्था में आते हैं तो हमें एक राहत प्राप्त होती है। बहुत थके हुए थे, टूटे हुए थे, परेशान थे, यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू किया, अच्छी अच्छी बातें की, तो बहुत अच्छा लगा, राहत मिली है। जैसे कोई व्यक्ति धूप से आता है, एसी कमरे में बैठता है, उसको बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अगर वो एसी कमरे में बैठा रहे फिर धीरे धीरे उसको उस कमर के अंदर कमियां दिखनी शुरू हो जाती है, ये क्या है, थोड़ा क्या है ना, कुर्सी ठीक नहीं है, टेबल ठीक नहीं है, सफाई नहीं है यहाँ पे, कुछ खाने को नहीं आ रहा, फिर उसकी और ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं, है ना। उसी ढंग से जब शुरू शुरू में भक्ति में आए थे, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन बदल गया। उसके बाद 2 साल 3 साल 5 साल के बाद कैसा लग रहा है, वो आनंद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है, पता नहीं क्या लग रहा है, कुछ कुछ गड़बड़ है ना। फिर क्या होता है, जब हम सुनते हैं भागवतम कक्षाएं और बड़े बड़े भक्तों से बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, हमें दास बनना है, दास बनना है, दास बनना है, भोगना नहीं है, भोगना नहीं है, तो क्या होता है, बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे अहंकार को ठेस पहुँच रही होती है ना, क्योंकि जो हमारे भोक्ता बनने की इच्छा थी उसको काटा जा रहा है और वो हमें अच्छा नहीं लग रहा। फिर क्या होता है, उस अहंकार वश हम शास्त्रों में, गुरु में, साधुओं में शंका उत्पन्न होती है, डाउट्स, नहीं नहीं यार प्रोसेस में दम नहीं है, बातें प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे संदेह आना शुरू हो जाते हैं, डाउट्स हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन सच्चाई क्या है कि हम अपने इस झूठे अस्तित्व को खोना नहीं चाहते। जो हमारा एक झूठा अस्तित्व है कि मैं भोक्ता हूं और हमेशा भोक्ता बना रहना चाहता हूं, ये संभव ही नहीं है। प्रकृति कभी पुरुष बन नहीं सकता, आत्मा निर्विकार है, आत्मा कभी विकार नहीं आएगा कि वो प्रकृति से भोक्ता बन गई, आत्मा तो बदलेगी नहीं कभी, जीव तो हमेशा जीव ही रहेगा, प्रकृति ही रहेगी। ये तो हमारी गलत फहमी है, जब तक ये गलत फहमी ठीक नहीं होगी हम कष्ट पाते रहेंगे, जब हम ज्ञान में स्थित हो जाएंगे तो भगवान की सेवा में रत हो जाएंगे और आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन क्योंकि हम अनादिकाल से इस गलत फहमी में जी रहे हैं, तो हम इस झूठे अस्तित्व को खोना नहीं चाहते और हम फिर हमारे अंदर संदेह उत्पन्न हो जाते हैं जो कि हमें और पूरी शरण लेने से रोकते हैं। तो अर्जुन के अंदर भी संदेह उत्पन्न हो गया, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण छोड़कर शिव जी की शरण ग्रहण कर दे, अर्जुन जैसे भक्त के साथ, और उन्होंने कृष्ण को ग्रांटेड लिया, ये तो मेरे मित्र हैं, ये रक्षा नहीं कर पाए, अब कोई नया मंत्र चाहिए, है ना। भक्त लोग फंस जाते हैं कई बार तंत्र के चक्कर में, जादू टूना के चक्कर में, कर्म कांड के चक्कर में, अरे भैया बिजनेस ठीक नहीं चल रहा तो ये हरे कृष्ण महामंत्र मदद नहीं करेगा, इसके लिए कुछ अलग से तंत्र शंत्र करो, वहां चले जाएंगे, कुछ ना कुछ और किसी और मंत्र की भी आवश्यकता है एडिशनल, भैया पेट्रोल डलाते हो, टूटी डलाते हो, निकालते साथ में, तो ये हरे कृष्ण महामंत्र है, साथ में थोड़ा बहुत कर्मकांडी मंत्र वगैरह किया करो, सुख भी चाहिए, भौतिक जगत में भी सुख चाहिए, आध्यात्मिक जगत में भी सुख चाहिए। तो ये भौतिक जगत के सुख को हम खोना नहीं चाहते, वास्तव बात यह है कि भौतिक जगत में सुख है ही नहीं और हमारे पास भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, नहीं, हर किसी को लगता है शायद मैं प्राप्त कर सकता हूं। एक प्लान फेल हो गया, हमें लगता है कि शायद प्लान की डिटेल्स में गड़बड़ थी, अब ये नया जो ऑब्जेक्ट है ये मुझे सुख दे देगा, नया ऑब्जेक्ट सुख दे देगा, इस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं लगा, एक नया रेस्टोरेंट खुला है उसमें खा खाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना। यहां मैं गया था हिल स्टेशन में, जाके नाम बड़ा सुना था लेकिन इतना आनंद नहीं आया, दूसरे हिल स्टेशन में जाएंगे अब सुखी होंगे। पहले तो भारत से व्यक्ति कोई विदेश में जाता था बहुत बड़ी बात होती थी, अब जिसको पूछो कहाँ से घूम के आ रहे हो, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, इतना कॉमन हो गया, देखा देखी में लोग ऋण लेके, लोन लेके घूमने जा रहे हैं बाहर। हम बोलते हैं गीता ले लो, बोले बिजनेस मंदा चल रहा है, और स्विट्जरलैंड घूम के आएंगे क्योंकि स्टेटस सिंबल है। पिक्चरों में देखते हैं स्विट्जरलैंड के सीन, हाँ हीरो हीरोइन की जगह अपने आप को देखें कितना अच्छा लगेगा, प्रोजेक्ट करते हैं हम वैसे जाएंगे तो शायद हम भी खुश हो जाएंगे, वहां जाएंगे हो के आ गए वैसे के वैसे ही दुखी। हो सकता है स्विट्जरलैंड में सुख नहीं है, न्यूयॉर्क में जाएंगे वहां सुख मिलेगा। तो हम ऐसे प्लान चेंज करते रहते हैं लेकिन भौतिक जगत में कहीं भी सुख नहीं है, किसी कोने में भी सुख नहीं है, लेकिन हमारा मिथ्या अहंकार कहता नहीं सुख है। और हम इस गलत फहमी से दूर नहीं होना चाहते, इसको बनाए रखना चाहते हैं, कितना बड़ा भ्रम है, और उस भ्रम के कारण हमारे अंदर शंकाएं उत्पन्न होती है। जो व्यक्ति हमें सत्य बता रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य को हम सत्य मान लेते हैं और इस तरह से हमें संदेह उत्पन्न होते हैं। इसी अहंकार वश हम शास्त्रों को तरोड़ मरोड़ देते हैं, है ना। अब जैसे हिरण्यकश्यप है, हिरण्यकश्यप पुराणों को कोट कर रहा है, पुराण से बोल रहा है, इससे पहले फर्स्ट क्लास आत्मा का ज्ञान दे रहा था, इतना बढ़िया आत्मा का ज्ञान, वही ज्ञान जो भगवान ने अर्जुन को दिया फर्स्ट क्लास, लेकिन उसमें ज्ञान में कमी क्या थी। प्रभुपाद कहते हैं केवल ये जानना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं अपने आप में पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त क्या है, जब ये जानकर कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ू ना। हिरण्यकश्यप ने केवल नेगेटिव ज्ञान दिया सोल के विषय में कि ये सोल आत्मा ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन आत्मा के विषय में जो सकारात्मक पॉजिटिव ज्ञान है वो है जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, उसको उसने नहीं दिया। तो केवल ये जाना कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये हाफ नॉलेज इज डेंजरस, ये भी आसुरी ज्ञान है, ये भी बड़ी बात नहीं है। जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं जुड़ेंगे हमारा आसुरी भाव बना रहेगा। और देखिए उसने अब पुराणों से कोट कर दिया, अब वो अथॉरिटी को मान रहा है, यमराज को मान रहा है, और खुद यमराज के चंगुल से छूटने के लिए तपस्या करेगा कि मैं मृत्यु से बच जाऊं, और यहां यमराज का अथॉरिटी को कोट कर रहा है। तो जहां तक हमारे लिए कन्वीनियंट होता है हम अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं, ऊपर की जो शक्तियां हमारे विचारों के अनुसार बात करेंगे हम अथॉरिटी मान जाएंगे, और जहां ऊपर की शक्तियों ने अथॉरिटी ने हमारे इच्छाओं के विपरीत बात की हमें कष्ट हो जाएगा, हमारी खराब है, हम तो नहीं मानते किसी को, हमारा विश्वास डगमगा जाएगा। जो हमारी इच्छाओं के अनुकूल बात करे वो तो ठीक है, जो इच्छाओं के प्रतिकूल बात करे तो ये बोनाफाइड ही नहीं है। प्रभुपाद जी को हम ऐसे कोट करते रहते हैं अपनी इच्छाओं को सूट करने के लिए, प्रसाद खाने की इच्छा बोले प्रभुपाद ने बोला यहां तक खाओ, आधी बात बोलेंगे यहां तक खाओ, उसके बाद प्रभुपाद ने क्या बोला कि सो जाओ ना, उसके बाद बोला यहां तक खा के खूब प्रचार के लिए बाहर निकलो कीर्तन करो, वो नहीं करेंगे, यहां तक खाने को बोला यहां तक खाऊंगा मैं गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं ना। इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय, आगा है ना, मुर्गी सोने का अंडा देती थी तो आगे वाले भाग की क्या आवश्यकता है, काट दो। तो जो बात शास्त्रों में अच्छी लगी उसको मान लो और जो नहीं लगी उसको काट दो, क्या दिक्कत है, काट दो। एक बार एक मस्जिद थी, उस मस्जिद में एक मुसलमान प्रतिदिन आता था, प्रतिदिन बहुत नियम से 5 समय आता था, बूढ़ा हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद उसका बेटा वो आता ही नहीं था कभी। तो मुल्ला जी ने बोला थोड़ा फॉलोअप करता हूँ, इतना बढ़िया व्यक्ति था उसका बेटे को आना चाहिए। उसके बेटे के पास गया, बेटा क्यों नहीं आते, आना चाहिए, तुम्हारे पिता तो रोज आते थे। बोले क्यों आऊँ, बोले लिखा है कुरान में लिखा है। कहते कुरान में कहाँ लिखा है, भाई लिखा है कुरान में मस्जिद में आना चाहिए, मगर मैं ये पढ़ा दूँ आपको कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं आना चाहिए। कैसे कैसी बात कर रहे हो, रोज कुरान पढ़ता हूँ मैं, कहाँ लिखा है कुरान में मस्जिद पर नहीं आना चाहिए, दिखाता हूँ वो कुरान लेके आया, तो कुरान उल्टी होती है ना वैसे कहाँ से होती हो। तो उसने उल्टा पढ़ाना शुरू कर दिया और उसमें लिखा था मस्जिद नहीं आना चाहिए। वो हैरान हो गए, बोला अरे भैया रोज पढ़ता हूँ मैं, ये कौन सी कुरान है भाई, मस्जिद नहीं आना चाहिए, कौन सी कुरान है। तो देखा वो उस पृष्ठ के अंत में था, उसने पृष्ठ दोबारा से किया, देखिए मस्जिद नहीं आना चाहिए बिना हाथ पैर धोए। तो आधी बात पकड़ ली उसने, मस्जिद नहीं आना चाहिए, मस्जिद नहीं आएंगे खत्म। तो वो ये आसुरी प्रवृत्ति है जो हमें शास्त्रों की बात सूट करती है, जो गुरु की बात सूट करती है वो ले ली। हिरण्यकश्यप यही कर रहा है, उसने बोला ये स्त्रियां लोग रोध हो कर रही हैं, मेरे को तपस्या में जाना है, अब मंदार हिल पे जाके तपस्या करनी है, हिरण विष्णु का वध करना है, ये रोना तो ना सेटल करें इनको, आत्मा का ज्ञान में फटाफट समझ आ जाए, पुरानी कथा सुनो भैया, कुछ चुप हो जाओ चुप हो जाओ, भाई जाना है मुझे काम पे जाना है। तो इसके लिए यमराज भी क्या, कोई भी पुराना उसको कोट करो, उसको शांत करो किसी ढंग से। तो अपने लाभ के लिए अपने भोग के लिए जब हम शास्त्रों का उपयोग करते हैं ये आसुरी प्रवृत्ति है, भोक्ता की प्रवृत्ति है। भक्तों के अंदर भी हम सब ये ना सोचें कि हम भक्ति में आगे भोक्ता प्रवृत्ति समाप्त हो गई, क्या कहना है कि बनी हुई है अभी तक। तो हम शास्त्रों को किस ढंग से अप्रोच करते हैं, शास्त्रों को पढ़ने का अर्थ है कि हमारे जीवन में बदलाव आए, हमारे भोक्तने की प्रवृत्ति सेवा की प्रवृत्ति में बदले। इस्कॉन चौपाटी में मंदिर है, वहां पे एक पुस्तकालय है, ब्रह्मचारी आश्रम है, उन्होंने उस पुस्तकालय का नाम लिखा है शरणागति, है ना। हमने शास्त्रों की शरण ग्रहण करनी है, हरि नाम की शरण ग्रहण करनी है, भगवान के धाम की शरण ग्रहण करनी है, विग्रह की शरण ग्रहण करनी है। शरण ग्रहण करने में भोक्ता का भाव नहीं होना चाहिए, जब भोक्ता का भाव होगा तो हम शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे, हम सरेंडर नहीं हो पाएंगे। जहाँ भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो इसमें हम हरि नाम की सेवा कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा हरि नाम की सेवा की है, हरि नाम को भोगा नहीं है। क्योंकि हम भोगने की प्रवृत्ति के साथ आते हैं, हम भक्ति की प्रत्येक क्रिया में भोग ही ढूंढते हैं। ये प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, शुरू शुरू में भगवान इतने दयालु हैं, किसी न किसी ढंग से मेरी शरण में तो आया, चाहे किसी भी प्रवृत्ति से आया। लेकिन एक बुद्धिमान भक्त को उसके बाद क्या करना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के सहारा लेकर इस भोगने की प्रवृत्ति को सेवा की प्रवृत्ति में बदलें। तो उससे क्या होगा, हम बहुत तीव्र गति से आगे प्रगति करेंगे, और जो तरह तरह के जो संदेह हैं हमें सताते हैं वो सताएंगे नहीं, जो तरह तरह के भय और ये असुरक्षा हमें सताती है वो नहीं सताएंगे। भक्ति का मतलब है हमारा जीवन सरल हो जाना चाहिए। तो पूर्ण रूप से जीवन सरल होगा और ब्लिसफुल होगा अगर हम थोड़ा सा आत्मावलोकन कर कर देखें कि मैं जो शरण ले रहा हूँ, शरण ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। हम भगवत धाम जा सकते हैं केवल चैंटिंग डांसिंग फीस्टिंग करते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करो, खूब प्रसाद पाओ और नृत्य करो, दिखने में कितने आसान है, लेकिन ये तीनों कार्य शरणागत होते हुए करना है। भगवान के सामने खूब नाचना है, खूब नाचना है, ये नहीं कि तुम्बा बज रहा है इसलिए खूब अच्छी म्यूजिक आ रही नाच रहा हूँ, ठीक है, हमने नाचना है किस लिए, राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जी को प्रसन्न करने के लिए। जैसे कि इस बारी हम पहले चर्चा कर रहे थे, इस ओरिजिनल सीन तुम स्वामी महाराज जाते हैं पोलैंड के बीचेस पर, छः सात घंटे धूप में प्रचार करते हैं। ये नहीं कि आधा घंटा थोड़ा एक्साइटिंग लगा फिर हम छोड़ो, हम जैसे हमको जब ठीक लगेगा उसके अनुसार कीर्तन करेंगे, जब हमें ठीक लगेगा तब हम जप करेंगे, है ना। हरि राम की सेवा करनी है, तो सेवक का मतलब क्या है, हर परिस्थिति में, है ना, कीर्तनीय सदा हरि। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए हम नाचें, भगवान की प्रसन्नता के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भक्तों का संग करें। जो भक्त हमें अच्छा लगता है वो अच्छा है, जो बुरा लगता है वो बुरा है, मन का संग करके मन के अनुसार हम निर्धारित करते हैं। जो हमारी ईगो संतुष्ट कर दे वो बहुत अच्छा है, गुणगान करे, हमारा ईगो अहंकार फूल गया ये हमारा मित्र है, जो हमारे अहंकार को थोड़ा सा ठेस पहुंचाए वो हमारा शत्रु है। हम कितने लोगों को अपना शत्रु मानते हैं इससे मालूम चल जाएगा हमारे अहंकार का लेवल क्या है, हम कितने विनम्र हैं। एक तरफ अहंकार है एक तरफ विनम्रता है, दोनों अपोजिट दिशा में है। हम कितने लोगों को मानते हैं, यार ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ये भी खराब है, ये भी खराब है, ये भी मेरे हमेशा अगेंस्ट जाता है, ये भी काउंट कर रहे हैं कितने ऐसे लोग हैं। अगर बहुत ऐसे लोग हैं उसका मतलब हमारा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है। अगर बोले आप कितने शत्रु कोई है ही नहीं, क्या कौन हो सकता है शत्रु, कोई भी नहीं है, ऐसा लगता है इसका बहुत अच्छी स्थिति है। तो भक्तों के संग में भी हमें लगता है ये सारे भक्त हैं जो हमेशा मेरे अगेंस्ट प्लानिंग करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं, इसका मतलब समस्या मेरे अहंकार में है, मेरा अहंकार बहुत बड़ा हुआ है तभी मुझे ऐसा लग रहा है, अंदर से मैं भयभीत हूँ। और जब व्यक्ति भयभीत हो तो द्वेषी बन जाता है, ये सब कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं कर रहा। अब कोई प्लानिंग कर भी रहा है, अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है, कृष्णा, कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता, ना भौतिक जीवन में अध्यात्मिक कोई बाल बांका नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण सब कुछ परम नियंता कृष्ण है। तो हमें भक्तों के संग में आने के बाद इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें हम इस अहंकार की गांठ को काट सकते हैं। ये मिथ्या अहंकार एक गांठ के समान है, आत्मा परा प्रकृति है और भौतिक अपरा, इसको बांध लेते हैं आपस में, क्योंकि आत्मा का चिन्मय जगत से आई आत्मा का इस भौतिक प्रकृति में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आत्मा इस भौतिक जगत से एक गांठ के द्वारा बंधी हुई है और वो गांठ है मिथ्या अहंकार। साधारण जीवन में हम देखते हैं एक धागे में गांठ लगाएंगे, उस गांठ को खोलना आसान होता है, काटना आसान होता है, इसलिए इस मिथ्या अहंकार की गांठ को काट देना है। और काटने की सबसे उत्तम विधि है साधुओं का संग, भक्तों के संग में संकीर्तन करना। भक्तों के संग में संकीर्तन करने से धीरे 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 ये गांठ कमजोर हो जाएगी। क्यों, हम देखते हैं भक्तों के साथ संकीर्तन करना इतना सरल नहीं है, है ना। भक्त लोग बहुत इधर उधर से आपके अहंकार को टच करते हैं, है ना, आप सोच रहे हैं कि आप तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं और भक्त लोग आके पिंच करते हैं इधर से चारों दिशाओं में, है ना, होते जैसे जेम पॉलिशर होते हैं ना, हीरों को कैसे चमकाया जाता है, आपस में रगड़ते हैं एक दूसरे का, हर एक भक्त अपने आप में हीरा है, उसको चमकाने के लिए और कोई विधि नहीं है, एक हीरा ही दूसरे हीरे को चमकाएगा, रगड़ो आपस में। तो भक्तों को इकट्ठा कर दो, रगड़ो, खूब नाचो, चलो आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, पॉलिश हो जाएंगे, अहंकार खत्म हो जाएगा। और फिर इन्हीं भक्तों में से किसी एक भक्त के साथ, कुछ भक्तों के साथ हमारा बहुत अच्छी आसक्ति होनी चाहिए। प्रसंगम अजरम पाशम आत्माना कवियो विद्व साहब साधु शिवतम मोक्ष द्वारम अपावृतम। जो आसक्ति मुशीनार के राजा को उनके उनके शरीर से थी, कोई आसक्ति नहीं थी, अपनी इनसिक्योरिटी थी, आप चले गए हमारा क्या होगा, इस भय से वो रो रही है कि हम भी मर ही गए। लेकिन जब भक्तों के संग में हम रहेंगे और भक्तों के संग में हम हमारा अहंकार कम होगा और भक्तों के संग से हम जब भक्तों से जब प्रेम करना सीखेंगे, उसके बाद क्या होगा कि हमारी जो आसक्ति है इस भौतिक जगत से कम हो जाएगी और धीरे धीरे ये जो मिथ्या अहंकार की जो गांठ है ये कट जाएगी। ये जो ज्ञान है, ये जो टेक्नोलॉजी है, केवल मनुष्य जीवन में ही हम सीख सकते हैं, और किसी जीवन में हम ये नहीं कर सकते। और किसी योनि में कुत्ता ये सोचेगा मैं कुत्ता हूँ बस उसी में ही रहेगा, बिल्ली ये सोचेगी मैं बिल्ली हूँ, पक्षी ये सोचेगा मैं पक्षी हूँ, लेकिन मनुष्य योनि में सोचूंगा मैं मनुष्य नहीं हूँ, मनुष्य के अंदर रहने वाली आत्मा हूँ। और आत्मा के अंदर ये पौरुष भाव है, भोगने का भाव है, जो कि मेरे इस भौतिक भवबंधन का एक कारण है। तो इस पुरुष के भाव को खत्म करना है, मुझे भोगने की इच्छा को खत्म करना है, तो इसके लिए मुझे गुरु की शरण लेनी है, भक्तों का संग करना है। लेकिन किस ढंग से करना है, अगर ये साइंस मुझे मालूम है कि मुझे गलत क्यों लग रहा है, दुख क्यों होता है, क्योंकि मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है, फिर मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, किसी से द्वेष नहीं करूंगा। लेकिन मेरे अहंकार को ठेस पहुंचती है तो मैं उसे द्वेष करना शुरू कर देता हूं, वो मेरा शत्रु बन जाता है, फिर क्या होता है, भक्ति में बाधा पड़ जाती है, भक्ति स्लो हो जाती है, भक्ति की प्रोग्रेस। लेकिन हम ये जानते हैं नहीं, ये मेरे अहंकार के कारण है। और ये बहुत सुंदर अवसर है, हमारे यहाँ तो ऐसे भक्तों का संघ है जिसमें सब एक दूसरे को पॉलिश कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आज अपनी लीला दिखाई तो वहाँ तो सभी एकदम उन्नत कोटि के भक्त भगवान के पार्षद और खूब आनंद लेते थे। उस परिस्थिति में भी एक ऐसे भक्त थे जो चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते थे, कौन थे वो, रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी बिना किसी कारण के महाप्रभु की निंदा करते रहते थे। महाप्रभु देखा, महाप्रभु जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे में चींटियां दिखाई दे रही हैं, कह रहे कैसे सन्यासी हो, छिप छिप कर मिठाई खाते हो। महाप्रभु प्रसाद ले रहे हैं, हाय हाय इतना ज्यादा प्रसाद, अरे कैसे भोग की चक समाप्त हो गई, कुछ तो शर्म करो। महाप्रभु ने अपना क्वालिटी आधी कर दी, बोले क्यों झूठा बैठा के दिखा रहे, हर परिस्थिति में क्रिटिसाइज, हर परिस्थिति में। महाप्रभु के भक्तों को बड़ा गुस्सा आता था, ये सामने आ जाए इसको मार देंगे, महाप्रभु रोकते थे, रोकते थे। महाप्रभु अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि अगर हमें कोई क्रिटिसाइज कर भी रहा है तो हमें क्या लेना चाहिए, ये भगवान के द्वारा भेजा हुए विशेष व्यक्ति है जो मेरे अहंकार को काट रहा है, ये हमारा टेस्ट है, ये बहुत बड़ा टेस्ट है, इसको पास करना है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा, तो उससे क्या होगा, हमारा जो अहंकार की गांठ है और मोटी होती जाएगी और गहरी होती जाएगी और इसको काटना और मुश्किल होगा। तो इस साइंस को हम जाने और समझें कि ये झूठा अहंकार ही हमारे इस भौतिक प्रबंधन का कारण है, और जो आसक्ति है इस संसार की वस्तुओं से ना करके हम भक्तों के संग करना सीखें और भक्तों से आसक्ति करेंगे तो क्या होगा कि हम इस अहंकार की गांठ को काट सकेंगे और भगवत हम वापस जा पाएंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है, टिप्पणी है? क्लियर हुए होते हैं और बढ़ते हैं इस ढंग से हैं जब उसका हम प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करते हैं। मैंने बताया कि जहाँ जहाँ तब तक डाउट हमें नहीं रहेगा जब तक हमारे कोई भोगने की प्रवृत्ति में हस्तक्षेप नहीं हो रहा, हम अपने आप को एडजस्ट किए जा रहे हैं और अपना जीवन सरल होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई बार एक लिमिट आ जाती है, बोले अब इससे ज़्यादा मैं सरल नहीं कर सकता जीवन, या ये मेरे भोगने की इच्छा में हस्तक्षेप जब शुरू होता है तब लगता है ये बात मुझे एक्सेप्ट नहीं, इस बात को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो जब तक उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा तो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन असली जो शरणागत है, जो अपने झूठे अहंकार को त्यागना, तो वो असली परीक्षा है।
आदि प्रैक्टिकल चीज आपने बताई, जैसे डिवोटिस की जो एक्चुअल प्यूरिफिकेशन पॉलिशिंग जो होती है जिससे वो मैच्योर बनते हैं, वो जैम पॉलिशिंग भक्तों के साथ होती है। जैसे कई भक्तों की ऐसी सेवा होती है कि वो दूसरे भक्तों का समा और अदर मार्गदर्शन करें, कई होगी क्योंकि प्रचारक होने के नाते हमारे पास ये सेवा भी होती है। तो ऐसे सूरत में ऐसे भक्तों की कैसे मदद करें जो भक्तों के संग में आना ही नहीं चाहते, हमेशा अवॉइड करते हैं, मुझे घर पे कोई सेवा दे दो, मेरी सबसे पटती नहीं है, मैं शुरू से ऐसा ही हूँ, या इस टाइप से मेरे को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर मैं थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना चाहता हूँ, क्या मतलब आप उनको खींच नहीं सकते भक्तों के संग में। सो हाउ टू हेल्प दोस पीपल, और शुड वी अलाउ टू लेट देम गो और लिव देयर लाइव्स जैसे वो जी रहे हैं वैसे, उनके हाल पे छोड़ दें।
तो प्रभु जी का प्रश्न आप सबने सुन लिया होगा कि कुछ ऐसे भक्त हैं जो भक्तों के संग में आने से घबराते हैं, उनको दिक्कत होती है, तो बोलते मैं अकेले रह के ही कर लूँगा, कुछ यहीं बैठ के जब कर लूँगा, माला बढ़ा दूंगा, चुपचाप रहूँगा, घर पे ही सेवा दे दो, है ना। मैं भक्तों के संग में आते ही जब पॉलिशिंग होती है तो थोड़ी सी पॉलिश करने के लिए ऐसे ऐसे तो होगी नहीं, जो यूँ होती है पॉलिश तो ना, जूता ही पॉलिश करने ऐसे थोड़ी करते हैं, खूब रगड़ा जाता है उसको ना, यूँ करके रगड़ा जाता है तब जाकर उसकी पॉलिश होती है, कोई थूकते भी हैं उस पर थूक के भी उसको यूँ किया जाता है, तो खूब तरह से ना, छोटे बच्चे को भी स्नान किया तो कैसे माँ उसको करती है, ये करके नाक में उंगली डाल देती है, आँखों के अंदर सलाई डाल देती है, तो बच्चा कितना रोता है, लेकिन उसकी पॉलिश की जा रही है, तो छोटा बच्चा तो रोएगा ही, उसको नहीं मालूम माँ उसको तेल लगाती है, देखा होगा वो जोर जोर से रो रहा होता है, पूरा घर तूफान पे, माँ बहुत जोर जोर से रो रहा, वो क्या रहा है, माँ बेचारी उसको साफ कर रही है, तो वो छोटा बच्चा है, तो वो कहता है मैं नहाना नहीं चाहता, मेरे को साफ मत करो, मैं गंदा ही रहना चाहता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, यहीं रहूंगा। तो कोई बात नहीं, अच्छा ये है कि प्रेमवश उसको थोड़ा सी ला के थोड़ा सा हम कर सकते हैं, लेकिन टैक्टफुली करना पड़ेगा, किसी ना किसी ढंग से वो कनेक्टेड रहे, चाहे घर में बैठ के सेवा कर ले, धीरे 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 जब शुद्धिकरण होगा, मैच्योरिटी आएगी।
जस्ट टू ऐड, मतलब उस केस ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे अगर वो छोटा बच्चा वाकई में छोटा नहीं है, वो छोटा बच्चा 40-45 साल का है, उससे ज़्यादा है, उसका बुखड़ा पक चुका, उस टाइम वो टूट सकता है, मोड़ नहीं सकता, तो उस सूरत में क्या करें।
बच्चा तो भक्ति में तो बच्चा ही है तो बस प्रयास करते रहे, कृष्ण सिंह से जुड़ा रहे, इस जन्म में तो शायद अगले जन्म में आएंगे, तो हम तो प्रयास कर सकते हैं। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव की, गौर प्रेमानंद की।